It's on the board, 75. Nilantara in hake vedanta sunaiva.
Nilantara yaike vedanta sunaiva.
Vairagya adaita marge pravesha karaiva.
Vairagya adaita marge pravesha karaiva.
Nilantara in hake vedanta sunaiva.
Nirantara yaike vedanta sunaiva.
Vairagya adaita marge pravesha karaiva.
Vairagya adaita marge pravesha karaiva.
Nirantara yaike vedanta sunaiva.
Nirantari yaike vedanta sunaiva.
Vairagya adaita marge pravesha karaiva.
Vairagya adaita marge pravesha karaiva.
Nirantara yaike vedanta sunaiva.
Nirantari yaike vedanta sunaiva.
Vairagya adaita marge pravesha karaiva.
Vairagya adaita marge pravesha karaiva.
Nirantara yaike vedanta sunaiva.
Nirantari yaike vedanta sunaiva.
Vairagya adaita marge pravesha karaiva.
Vairagya adaita marge pravesha karaiva.
Nirantara yaike vedanta sunaiva.
Nirantari yaike vedanta sunaiva.
Vairagya adaita marge pravesha karaiva.
Vairagya adaita marge pravesha karaiva. अनुवाद एसी भक्ति विधान स्वामी शिला प्रभुपाद जी द्वारा शिला प्रभुपाद के अनुवाद मैं इन्हें निरंतर विधान दर्शन सुनाऊंगा जिससे वह अपने वैराग्य में स्थिर रहें और इस तरह अद्वैत मार्ग में प्रवेश कर सकें। तात्पर्य साधवों भट्टाचार्य के अनुसार वेदान दर्शन के अनुशीलन से सन्यासियों की इंद्र तृप्ति से विरक्त रहने में सहायता मिलती है। इस तरह सन्यासी अपने कौपीन की मर्यादा रक्षा कर सकते हैं। मनुष्य को इंद्र निग्रह के साथ मन निग्रह का अभ्यास करना चाहिए और वाणी मन क्रोध जीव उदर तथा उपस्थ इन छह रेगों का दमन करना होता है, तभी वह भगवत भक्ति को समझ सकता है और आदर्श सन्यासी बन सकता है। इसके लिए ज्ञान का अनुशीलन तथा वैराग्य आवश्यक है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहकर सन्यास आश्रम की रक्षा नहीं की जा सकती। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुझाया कि वैराग्य की शिक्षा से श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रौढ़ तरुणावस्था की इच्छाओं के प्रभाव से बचाया जा सकता है।
So here we see an interesting situation. A monist is trying to convert a Vaishnav.
तो यहाँ पर हम बहुत ही दिलचस्प स्थिति देखते हैं कि एक मायावादी एक वैष्णव को मायावाद सिद्धांत में बदलना चाहता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ये चीज देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही सुंदर तरुण अवस्था
में
उनकी वो क्रांति से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि वो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है।
It will be later, after he shows some sign of bhakti, that Mahaprabhu will reveal the Sadpurush form to Sarvabhauma Bhattacharya.
तो इसे कुछ देर बाद जो है सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना सद्भुज रूप दिखाते हैं।
You know the Sadpurush form?
क्या आपको सद्भुज रूप के बारे में पता है?
What is it? Loud!
तो षडभुज रूप में चैतन्य महाप्रभु अपना कृष्ण राम और अपना स्वयं का रूप दिखाते हैं.
One form, so he's going Guru Narayana is Ram, he's carrying water pot as Mahaprabhu and so forth.
तो जब वो बांसुरी पकड़ते हैं तो कृष्ण का रूप दिखाते हैं, धनुष और तीर पकड़ते हैं तो अपने राम का रूप दिखाते हैं, इसी तरह से दंड का चैतन्य महाप्रभु.
Before he could be qualified for that type of mercy, he had to get purified.
So, इस दर्शन को देखने से पहले उनका शुद्धिकरण हुआ, फिर जाके वो दर्शन कर पाए.
He would get purified by personal service by hearing from Chaitanya Mahaprabhu.
और उनके शुद्धिकरण हुआ जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा की और उनसे सुना.
So the plan would come out the opposite of what Sarvabhauma had when I said, "Hear Vedanta from me."
तो सार्वभौम भट्टाचार्य की जो योजना थी उसके बिल्कुल विपरीत हुआ. सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन गए.
7 days or was it more than 7 days?
7 दिनों में.
Mahaprabhu remained silent.
महाप्रभु लेकिन शांत रहे 7 दिन तक.
सार्वभौम भट्टाचार्य asked him, "What is the problem? Don't you understand Vedanta?"
सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु का क्या बात है, 7 दिनों तो तुमने कुछ पूछा नहीं, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है या नहीं?
7 days, how many days? 7 days.
7 दिनों तक.
Was it more than 10 days? I don't know.
7 days.
Mahaprabhu says, "I understand Vedanta. Well, I don't understand your confusing explanations."
तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाँ मैं वेदांत तो समझता हूँ लेकिन आपकी भ्रमित करने वाली टीका को नहीं समझ पाता. हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, सार्वभौम आचार्य उस समय के बहुत बड़े दार्शनिक थे.
I think he was incarnation of Brihaspati, isn't it?
वो बृहस्पति के अवतार थे.
So you can imagine what kind of scholar he was.
तो बहुत ही विख्यात पंडित थे वो.
And to be challenged by a young man like this is a big shock because Mahaprabhu was supposed to be a student and he was supposed to be the master.
तो उनके लिए बहुत बड़े धक्के की बात थी कि नव जवान लड़के ने उनको जो है चुनौती दी थी.
Then Mahaprabhu proceeds because he challenges him. This Sarvabhauma Bhattacharya challenges him.
तो फिर उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी चुनौती देते हैं.
Oh really? My explanations are confusing? Okay, Shri student, if you're so intelligent, then what are your explanations? Your explanations are better than mine.
तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मेरी टीका गलत है, अगर तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हो तो तुम इसके बारे में बताओ.
So then Mahaprabhu humbly begins to explain Vedanta Sutra with Vaishnava understanding, in other words, the proper understanding of Vedanta Sutra.
और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही विनम्रता पूर्वक जो वैष्णव सिद्धांत है उस तरीके से वेदांत दर्शन को समझाते हैं.
It was so first class. Remember, Mahaprabhu was formerly Nimai Pandit, so he was a super scholar.
तो ये महाप्रभु बड़ी सरलता से कर पाए क्योंकि हमें याद होगा जब महाप्रभु छोटे से बालक थे तो निमाई पंडित से विख्यात थे, बहुत बड़े पंडित थे.
Nimai Pandit, he could not be defeated by anybody.
और निमाय पंडित को कोई नहीं हरा सकता था.
So for him to defeat Sarvabhauma Bhattacharya was no big deal.
तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी सार्वभौम भट्टाचार्य को जो है हराना.
It was rigged. It was a setup.
So basically, एक तरीके से प्रयोजित था ये पूरा जो लीला.
Sarvabhauma Bhattacharya would become purified.
इस तरीके से सार्वभौम भट्टाचार्य का शुद्धिकरण क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे.
Those days, if you defeated a scholar, he had to surrender to you. That was the etiquette in those days. So, since Mahaprabhu massively defeated Sarvabhauma Bhattacharya, then he had to become disciple. That was the etiquette.
तो उस समय ऐसी प्रथा थी कि अगर आप तर्क में हार जाते तो आपको जो है जिनसे आप हारे उनका शिष्य बनना पड़ता था. और ऐसा ही हुआ, सार्वभौम भट्टाचार्य फिर आगे जाके चैतन्य महाप्रभु को शरणागत होते.
Let's go to the next verse.
हम अगले श्लोक में जाते हैं.
कहे यदि पुनरापि युग पत जिया संस्कार करिय उद्मा संप्रदाय अनिया.
अनुवाद। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुझाया, यदि श्री चैतन्य महाप्रभु चाहें तो मैं उन्हें गृह वस्त्र प्रदान करके एवं उनका पुनः संस्कार करा के उच्च कोटि के संप्रदाय में ले आऊंगा। तात्पर्य, भट्टाचार्य को अच्छा नहीं लगा कि महाप्रभु भारतीय या पूरी संप्रदाय से संबंधित हैं, अतः वह उन्हें सारस्वती संप्रदाय में प्रतिष्ठित करना चाह रहे थे। वस्तुतः वे श्री चैतन्य महाप्रभु की स्थिति से परिचित नहीं थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में चैतन्य महाप्रभु किसी उच्च या निम्न संप्रदाय पर आश्रित नहीं थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोच्च पद पर ही बने रहते हैं।
So here we see that Jagannath Bali, Subhadra, Krishna Balaram, Radhigrama, Vijay. Here we see that Sarvabhauma Bhattacharya wants to reinitiate Mahaprabhu.
तो यहाँ पर देखते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य पुनः चैतन्य महाप्रभु को दीक्षित करना चाहते हैं।
Although Mahaprabhu was already initiated sannyasi.
हालांकि चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी पहले ही थे।
But there is a distinction that Prabhupada is making in the purport here.
और यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी उस चीज की व्याख्यान कर रहे हैं।
The Sarvabhauma Bhattacharya wanted to initiate him into Saraswati Sampradaya, which he considered or was considered more prestigious.
तो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को सारस्वती संप्रदाय के अंदर दीक्षा देना चाहते थे, जो कि उस समय ज्यादा उच्च माना जाता था।
Whereas Mahaprabhu had taken initiation into Bharatiya Sampradaya.
हालांकि महाप्रभु ने भारतीय संप्रदाय में दीक्षा ली थी।
केशव
भारती जी से।
So they were called Bharati in that line.
तो उनके शिष्यों को भारतीय संप्रदाय में कहा जाता था।
ईश्वरपुरी। So the Puri is also there in the sampradaya.
तो वो पूरी संप्रदाय भी है।
Sarvabhauma is considering this inferior.
तो सार्वभौम भट्टाचार्य इसको निम्न मान रहे हैं।
It's actually a great blunder. He wants to reinitiate him.
तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है कि चैतन्य महाप्रभु को दोबारा दीक्षा देना चाहते हैं।
Cannot understand Mahaprabhu's.
क्योंकि वो महाप्रभु की स्थिति को नहीं जानते।
77.
इसलिए पुनः दीक्षित करना चाहते हैं।
गोपीनाथ मुकुंद दुन्ने दुखी होइदा गोपीनाथ चाया किच कहिता लगिला।
अनुवाद, गोपीनाथ आचार्य तथा मुकुंदत ये सुनकर बहुत दुखी हुए, अतः गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को इस प्रकार संबोधित किया।
Gopinath Acharya and Mukunda are principal devotees, principal disciples of Chaitanya Mahaprabhu.
यहाँ पर गोपीनाथ आचार्य और मुकुंदत दुखी हुए क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो वो चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्य हैं।
So naturally, hearing that this outsider wants to mess with their guru Maharaj and make an apparatus of initiating him, naturally they get upset. Naturally.
तो एक तरीके से देखा जाए जब उनको पता चला कि उनके गुरु को जो है दोबारा दीक्षा दी जा रही है, ऐसी बातें होती हैं तो उनको बहुत बुरा
लगता।
तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा अपराध है और वो सार्वभौम भट्टाचार्य से मिलने के लिए जाते हैं। तो ये छोटा अपराध नहीं है, महा अपराध है।
So the great devotee Gopinath Acharya and Mukunda, they reply to Sarvabhauma because they cannot swallow this aparadh, they cannot tolerate.
तो उनसे ये चीज सही नहीं जाती कि इतना बड़ा अपराध होता है तो सार्वभौम भट्टाचार्य से मिलने जाते हैं।
So going to text 78, they say, Bhattacharya tumi in har na jana mahima Bhagavata lakshanera in haite sima.
अनुवाद, हे भट्टाचार्य, आप श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को नहीं जानते, इनमें भगवत्ता के समस्त लक्षण अपनी चरम सीमा को प्राप्त हैं। तात्पर्य, चूंकि भट्टाचार्य निर्विशेषवादी थे, अतः उन्हें निर्विशेष तेज के परे परम सत्य का कोई ज्ञान नहीं था, किंतु गोपीनाथाचार्य ने उन्हें बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। परम सत्य को जानने वाले इसके तीन अवस्थाओं से परिचित होते हैं, जिनकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में की गई है। विदन्ति तद् विदन्तस्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दीयते। जिन्हें अद्वैत परम सत्य का ज्ञान है वे स्पष्ट रूप से जानते हैं कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण है, षड् ऐश्वर्य पूर्ण। गोपीनाथ आचार्य ने दृढ़तापूर्ण बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ये छह ऐश्वर्य पूर्ण रूपेण विद्यमान है। गोपीनाचार्य यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु को एक तरीके से दृढ़ता से सुना रहे हैं।
Indirectly, he's calling him a fool.
एक तरीके से उनको मूर्ख कह रहे हैं।
He's saying indirectly.
तो अपरोक्ष रूप से उनको एक चीज कह रहे हैं।
Fool, can't you see? This is the Supreme Personality of Godhead. He cannot give instruction.
तो वही कह रहे हैं कि मूर्ख तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है।
He is full and complete as he is. He does not require initiation into another sampradaya in order to attain completeness. He's already perfect and complete.
तो उनको पूर्ण होने के लिए कोई दोबारा दीक्षा की अवस्था नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है।
So the Prabhupada quotes this verse, which he quoted hundreds of times Prabhupada quoted this verse.
तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी वो श्लोक का की व्याख्या कर रहे हैं जो कि बहुत बार सैकड़ों बार पहले भी वो कह चुके हैं।
First canto, second chapter, text 11, Srimad Bhagavatam. Hundreds of times Prabhupada quoted this.
तो सैकड़ों बार श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का जो है उद्धृत करते हैं, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक।
वरन्ति तद्वाविदास तत्वम यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमेति भगवन् इति शब्दते। So given the number of times that Prabhupada quoted this verse, we can understand that for preaching purposes, one of the most important verses in the Bhagavatam.
तो कहेंगे श्रील प्रभुपाद जी ने इसका उद्धरण बहुत बारी किया है, अलग अलग जगहों पे किया है, इससे हम समझ सकते हैं कि प्रचार के श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
Namely, that the absolute truth is present in three forms.
कि जो परम सत्य है वो तीन रूप में पाए जाते हैं,
ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान।
ब्रह्मन में परमात्मा के रूप में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में।
So, talk of the Supreme Personality of God is not complete without including all three categories.
जब तक हम तीनों को सम्मिलित ना करें तो भगवान की जो चर्चा पूरी नहीं होगी।
And all these opulences are present in Chaitanya Mahaprabhu. This is Gopala.
और तीनों के तीनों के रूप श्री चैतन्य महाप्रभु में उपस्थित हैं।
Text 79. तहते तहते विख्याता इन परमा ईश्वर अज्ञास्तने किचु नहि विज्ञा।
अगला प्यार अनुवाद। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में विख्यात हैं। इस विषय से अनजान व्यक्ति तत्वताओं के निर्णय को अत्यंत कठिनाई से समझ पाते हैं।
More or less, Gopinath Acharya is telling him, you're less intelligent.
तो एक तरीके से देखा जाए गोपीनाथ आचार्य यही कह रहे हैं कि तुम बहुत मूर्ख हो।
Sarvabhauma Bhattacharya was such a revered scholar in those days. To call such a big acharya, you're less intelligent, is really quite something.
तो सार्वभौम भट्टाचार्य इतने विख्यात पंडित थे कि उस पर किसी कोई अगर उनको कहे कि तुम अल्प बुद्धि वाले हो तो बहुत बड़ी बेइज्जती थी।
Unlike faith in Chaitanya Mahaprabhu, therefore he feels strong enough in his shraddha to challenge.
क्योंकि गोपीनाथाचार्य के अंदर प्रगाढ़ श्रद्धा थी चैतन्य महाप्रभु में, तो इसलिए वो उनको सार्वभौम भट्टाचार्य को ऐसा बोल पाए। एक तरीके से वो कह रहे हैं कि तुम अज्ञान में हो।
Therefore he says that's why you cannot understand because you're ignorant. In other words, you're a fool. Therefore you cannot understand Chaitanya Mahaprabhu.
तो एक तरीके से सार्वभौम भट्टाचार्य को गोपीनाथाचार्य कह रहे हैं क्योंकि तुम अज्ञान में हो, तुम मूर्ख हो, इसलिए तुम चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ सकते।
नंबर 80 शिष्य गण कहे ईश्वर कहा कौन प्रमाणे आचार्य कहे विज्ञान
अगले प्यार में अनुवाद सागौ भट्टाचार्य के शिष्यों ने प्रतिकार करते हुए पूछा आप किस साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु परमेश्वर है गोपनाचार्य ने उत्तर दिया इसका प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने वाले प्रमाणिक आचार्यों के कथन है
Just like if somebody challenges your guru, then immediately disciples will defend.
तो जैसे अगर कोई गुरु को चुनौती दे तो उनके शिष्य तुरंत जो है उनको बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं।
So the disciple is saying, "What is your evidence that this Mahaprabhu is the supreme personality of Godhead? You're making this bold statement. What is your evidence? Come on."
तो उनके शिष्यों ने उनको गोपनाचार्य को पूछा तुम बड़े डंके की चोट पे कह रहे हो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है तो कैसे कैसे तो क्या प्रमाण है तुम्हारे पास
They're very boldly challenging, but this is proper etiquette. The guru, the disciples should defend the guru.
तो एक तरीके से ये सही शिष्टाचार है अगर वो गुरु को चुनौती देता है तो शिष्य को आगे देके उस दूसरे
What is your evidence?
तो क्या प्रमाण है तुम्हारे पास
You are contradicting my guru Maharaj. Now, what is your evidence? Come on.
तुम मेरे गुरु महाराज को चुनौती दे रहे हो तुम्हारे पास क्या प्रमाण है
You better have good argument or you're finished, you're dead.
तुम्हें प्रमाण देना ही पड़ेगा नहीं तो खत्म हो जाओगे ध्वस्त हो जाओगे
तो
ऐसे पंडित के बीच में तत्व जो है वो ऐसे लड़ाई होती है
you couldn't defeat the top scholar, you're dead.
और अगर आप पंडित का विरोध नहीं कर पाए तो बस आप मृत्यु के समान हैं
In my opponent, they used to chase the losing party into the Ganga and they would run for their life, they would beat them.
तो निमाय पंडित भी जो है जब छोटे थे कुछ ऐसे ही क्या करते थे तो पहले जमाने में ऐसे होता था कि अगर आप तत्व की लड़ाई में हार जाए तो वो मृत्यु के समान था आपको भागना पड़ता था
But Nimai Pandit was defeating even big, big acharyas who came riding on elephants for philosophical debates, you know, that is their Chaitanya Leela.
तो निमाय पंडित जो है बड़े बड़े आचार्यों को जो है तत्व में ध्वस्त कर दिया करते थे कि हालांकि वो बड़े बड़े हाथों में जो है वो आया करते थे लेकिन निमाय पंडित किसी को नहीं छोड़ते थे
smashed all of them.
तो पूर्ण रूप से उनको हरा दिया करते थे
Now he is in his Mahaprabhu Leela, Sannyasi Leela, Acharya Leela.
और अब वो महाप्रभु आचार्य लीला में है
his potency has not decreased at all.
तो और उनकी शक्ति वैसी ही है तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के समय से भारत में ऐसे अनेक छत अवतार थे जिनमें प्रमाणिक लक्षण नहीं पाए जाते 500 वर्ष पूर्व सार्वभौम भट्टाचार्य के विद्वान शिष्यों ने जब गोपनाचार्य से साक्ष्य देने के लिए कहा तो वह बिल्कुल ठीक कह रहे थे
To challenge and say, what is your evidence? In other words, just accepting. Well, die, okay. He's very charming. Wow, okay. Yeah. So instead they challenge, what is your evidence? The Prabhupada is confirming, yes, this was correct.
Srila Prabhupada ji yahan par keh rahe hain ki ek tarike se dekha jaye to Sarvam Bhattacharya ke shishyon ne sahi kiya ki chunauti thi aag moon ke swikar nahi kiya ki Chaitanya Mahaprabhu swayam Bhagwan hai यदि कोई व्यक्ति अपने आप को ये किसी अन्य को ईश्वर या ईश्वर का अवतार बतलाता है तो उसे अपने इस दावे को सिद्ध करने के लिए शास्त्रों से साक्ष्य देने चाहिए अतः भट्टाचार्य के शिष्यों का अनुरोध उचित है दुर्भाग्यवश आज के समय में किसी को भी शास्त्रों का संदर्भ दिए बिना ईश्वर के अवतार के रूप में प्रस्तुत करना प्रचलित है किंतु बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी व्यक्ति को ईश्वर का अवतार मानने के पहले उसे साक्ष्य मांगे जब सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्यों ने गोपीनाथ आचार्य को चुनौती दी तो गोपीनाथ ने तुरंत उचित उत्तर दिया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए हमें महापुरुषों के वचन सुनने चाहिए ब्रह्म नारद व्यासदेव अस्य तथा अर्जुन जैसे महापुरुषों के कथनों से ही कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हैं इसी तरह उन्हीं महापुरुषों के कथनों से ही श्री चैतन्य महाप्रभु भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हैं इसकी व्याख्या आगे की जाएगी
अथॉरिटीज दे वांट टू हियर फॉर एस्टैब्लिशिंग द पोजीशन ऑफ महाप्रभु हु हैपन टू बी आवर ओन आचार्यस लॉर्ड ब्रह्मा फोर कुमार
तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो चीज स्थापित करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं और उसमें से ब्रह्मा जी चार कुमार भी सम्मिलित हैं, नारद मुनि, शिला व्यास देव, अच्युत। ये हमारे आचार्य हैं।
So if outsiders are calling upon our acharyas, because they, our acharyas, were universally recognized as authority.
तो जो ये आचार्य हैं देखा जाए हमारे संप्रदाय के ही हैं और हमारे आचार्य जो हैं बाहर के संप्रदाय में भी प्रमाणित माने जाते हैं इसलिए उनकी बातों का विश्वास किया जाता है.
Gopinath is saying, we will give you, don't worry, we're going to give you the authority by which we dare to say that, that Mahaprabhu is
So Gopinath Acharya says, don't worry, we will give you the pramana. That's 81. And in the
next
love,
Shishya kahe Ishwara tattva sari anumane Acharya kahe anumane nahe Ishwara gyane
Anuva भट्टाचार्य के शिष्य ने कहा हम तार्किक अनुमान के द्वारा परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं. गोपनाचार्य ने उत्तर दिया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में वास्तविक ज्ञान इस प्रकार के अनुमान तथा तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता.
So, disciples of Bhattacharya. They say we derive knowledge of the absolute truth by logical hypothesis.
तो भट्टाचार्य सार्वम भट्टाचार्य के शिष्यों ने कहा हमें ज्ञान तो नहीं है लेकिन हाँ तर्क से हम समझते हैं.
Logical hypothesis. This is a fancy way of saying mental speculation.
तो तर्क जो है जो जिनसे वो समझ लेते हैं एक तरीके से मनोकल्पना ही है.
Or if you want to be kinder, you can say sankhya.
या एक तरीके से इनको सांख्य योग भी कहते हैं.
This is how we derive truth. I don't know about you, so you're going to have to satisfy us through our methodology. Is what disciples of Sarvabhauma Bhattacharya is. You're making a wild assertion here. That your guru, that your sadhu here is the Supreme Personality of Godhead. Well, we don't accept unless you can convince us by reason and logic.
तो यहाँ सारों बड़े सारे के शिष्य कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप प्रमाण दें लेकिन हम प्रमाण में विश्वास नहीं करते हम तर्क में विश्वास करते हैं. तो अगर आपके जो साधु हैं श्री सार्वभौम श्री चैतन्य महाप्रभु उनको अगर आप कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो आपको साबित करना पड़ेगा तर्क से.
But Gopinath replies with the basic Vaishnav Siddhanta.
और गोपनाचार्य जो वैष्णव सिद्धांत है वो स्थापित करते हैं वो रखते हैं.
One cannot attain real knowledge of the Supreme Personality of Godhead by such logical hypothesis and arguments. You can't come to know who is the Supreme Personality of Godhead that way.
तो यहाँ गोपीनाथ आचार्य कह रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में वास्तविक ज्ञान इस प्रकार के अनुमान या तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता.
Read from the purport, please.
तात्पर्य विशेषतः मायावादी दार्शनिक परम सत्य के विषय में अनुमान लगाते हैं वे तर्क करते हैं कि हम इस भौतिक जगत की हर वस्तु को सृजित उत्पन्न हुई अनुभव करते हैं. यदि हम किसी भी वस्तु का इतिहास खोजें तो उसका एक सृष्टा मिलेगा अतः इस विराट जगत का कोई सृष्टा होना चाहिए. इसी ऐसे तर्क से वह इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस विराट जगत की सृष्टि किसी महान शक्ति द्वारा की गई है. मायावादी
higher power, you got that far.
Yes, sir.
So higher power, so this phrase higher power is used by new age type people in the west also. They acknowledge pious people but are impersonalists, brahmavadis. Talk.
तो अमेरिका में जो कुछ पुण्य ब्रह्मवादी किस्म के लोग हैं तो ये वो भी ये मानते हैं कि वास्तविक रूप में दुनिया की सृष्टि किसी महान शक्ति ने की है.
There are two types of impersonalists, Brahmavadis and Mayavadis.
तो दो किस्म के निराकारवादी हैं, एक ब्रह्मवादी और एक मायावादी.
I myself was a Brahmavadi.
यहाँ महाराज कह रहे हैं कि मैं भक्ति में जुड़ने से पहले भी एक ब्रह्मवादी था.
Brahmabadi means somebody who is not an offender against the Supreme Personality of Godhead.
ब्रह्मादि का मतलब यह होता है कि वो कृष्ण अपराधी भगवान के प्रति अपराध नहीं करता
But they're impersonalists.
लेकिन वो निराकारवादी होते हैं
So I, because I had been an atheist, then I became converted to a Brahmabadi.
क्योंकि मैं नास्तिक था फिर ब्रह्मवादी था
There is supreme consciousness behind everything. So they can understand there's a supreme consciousness, but they cannot understand the Supreme Personality of God at all. That it can only be understood by the mercy of a devotee. That's all. There's no other way.
तो ये ब्रह्मवादी जो है ये जरूर मानते हैं कि इस सृष्टि के पीछे एक परम शक्ति है लेकिन वो ये नहीं मानते कि शक्ति जो है एक व्यक्ति है वो एक भक्ति कृपा से ही हम जानते हैं
Another reason Mahaprabhu was saying nasteva, nasteva, nasteva. Why no other way except by hearing from a devotee. That's another reason why he's saying nasteva, nasteva, nasteva.
जितने महाप्रभु अक्षय श्लोक पोर्ट करते थे nasteva, nasteva, nasteva. वो इसलिए कहा करते थे कि और कोई तरीका नहीं है और कोई तरीका नहीं है और कोई तरीका नहीं है.
No other way to understand the Supreme Personality of God.
भगवान को समझने का और कोई भी तरीका नहीं है.
Just reading in books you cannot understand.
हम किताबें पढ़के नहीं समझ सकते.
You have to be introduced by a devotee.
आपको एक भक्त की कृपा जरूर चाहिए.
Of course, Prabhupada's books are different because he's a Sakta Vaishnavatar. He's written these books. That's by contact with a Sakta Vaishnavatar. They have direct contact with Prabhupada and some can begin to understand something. A little light bulb can come on.
तो देखा जाए श्रील प्रभुपाद जी जो है क्योंकि शक्ति विश अवतार हैं तो अपनी किताबें मौजूद हैं तो अपनी किताबों के द्वारा जो है वो दूसरे लोगों को भक्ति में ले आते हैं
So the great power, or the great consciousness behind the universe, they can understand there's a power of creation, a great power of the cosmic manifestation. But person, no, that they cannot understand.
तो उसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि जो सार्वभौम प्रतिज्ञा के शिष्य थे हालांकि वो ये जरूर मानते थे कि सृष्टि के पीछे एक महान शक्ति है लेकिन वो एक व्यक्ति हो सकता है इसमें विश्वास नहीं करते थे
Their brains cannot accommodate the fact.
तो उनकी बुद्धि इस चीज को जो है समझ नहीं सकती
Keep going. Tell them what I said.
तो उनकी बुद्धि जो है इस चीज पे विश्वास नहीं कर सकती कि जो जो शक्ति है वो एक व्यक्ति भी हो सकती है
Sometimes the Mayavadi philosophers will accept Lord Krishna or Lord Ram as Bhagavan but they think of the Lord as a person having a material body
कभी-कभी ये मायावादी जो है कृष्ण राम को भगवान तो जरूर मानते हैं लेकिन वो ये मानते हैं कि कृष्ण राम जो है वो एक भौतिक शरीर में है
So you don't understand that the Supreme Personality of God has a spiritual body.
वो ये नहीं समझ सकते कि कृष्ण नाम का जो शरीर है वो आध्यात्मिक है.
They think of Krishna as a great personality, a human being.
उनको ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण जो है बहुत बड़े पुरुष है महान पुरुष है.
Within whom there is supreme impersonal power.
और उनके अंदर वास्तव रूप में जो है वो परम शक्ति है.
In other words, they think that the incarnations of Godhead are incarnations of Brahma. That's as far as they can go.
तो उनको ये लगता है कि वास्तव रूप में जो ये भगवान के अवतार हैं, वो परम शक्ति के अवतार हैं.
Therefore, they finally conclude that the impersonal Brahma is the supreme, not the personality of Krishna.
तो उनको लगता है वास्तव रूप में जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, वो उस ब्रह्म के ही अवतार हैं.
In other words, yes, sometimes just as an illusion, some Brahman will assume personality and they leave it at that, they just drop it without pursuing whether it's logical. Yes, sometimes Brahman assumes personality, Braha avatar, Nishinga avatar, that's all right, it's Brahman. For some reason, sometimes Brahman assumes different costumes, but you should know it's just Brahman.
तो ये कहते हैं कि वास्तविक रूप में ये ब्रह्मांड जो है वो अलग अलग अवतार नरसिंह वराह राम के रूप में आते हैं लेकिन ये एक अलग वस्त्र पहनने के समान है लेकिन तुम्हें गलती मत करना वास्तविक रूप में परम शक्ति वो ब्रह्मन है
Why Brahman assumes different costumes, they cannot explain.
वो इस चीज को नहीं समझा सकते कि ब्रह्मन अलग अलग वस्त्र क्यों पहनते हैं कभी नरसिंह के रूप में आते हैं कभी
They are Leela avatars.
तो जो लीला जो अवतार के रूप में आते हैं वो क्यों आते हैं वो इस चीज को नहीं समझा पाते।
They descend to perform pastimes for the sweet will of the Lord. Killing demons is secondary or tertiary.
तो वास्तविक रूप में वो ये नहीं समझा पाते कि भगवान के अवतार सुंदर सुंदर लीलाएं करने क्यों आते हैं। वास्तविक रूप में वो सुंदर लीलाएं भक्तों के साथ करने आते हैं। जो असुरों को मारना है वो तो एक सेकेंडरी कारण है।
But Prabhupada is giving the conclusion of each Upanishad by saying, but we can understand that the Brahmana is the effulgence of the body of the Lord.
तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी उपनिषद में समझाते हैं कि जो ब्राह्मण है वास्तविक रूप में भगवान की कांति है।
And he quotes from the Shastra.
और वो शास्त्र से इसका उद्धरण करते हैं।
यस्य प्रभा प्रभतो जगन्नंद कोटि कोटि विशेष वसिद्धारि विभूति मेनान तद् ब्रह्म निष्करम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। Read the translation.
ब्रह्म संहिता। मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ जिनके दिव्य शरीर का तेज ब्रह्म ज्योति कहलाता है। वह ब्रह्म ज्योति जो असीम अगाध तथा सर्वव्यापी है, अनंत ग्रहों की सृष्टि का कारण है, जिनमें तरह तरह की जल वायु है तथा जो जीवन की विशिष्ट दशाओं से युक्त है।
So, Ishupanishad is one of the best sources for defining the absolute truth as Bhagavan and Brahman. That Brahman is originating from Bhagavan is clearly this is the sum and substance of Ishupanishad.
Ishupanishad granth hai, uska saar yahi hai ki jo Brahman hai vastavik roop mein wo Bhagavan ki kanti hai. Hum Ishupanishad samajh sakte hain.
How many of you have read Ishupanishad?
Aap logon se kitne bhakt hai jinhone Ishupanishad padha hai? Kripa karke haath upar uthaiye.
Everyone must read it.
तो आप सबको पढ़ना चाहिए इशुपनिषद।
Prabhupada translated and made available the Ishupanishad in 1969.
तो 1969 में श्रील प्रभुपाद जी ने इशुपनिषद का अनुवाद कर दिया था।
You have to ask why 1969?
तो 1969 में श्रील प्रभुपाद जी इतनी जल्दी आंदोलन को कुछ 3-4 साल ही हुए थे, इतनी जल्दी इशुपनिषद का अनुवाद क्यों किया?
Answer is that Ishupanishad is a definitive treatise. You know the word treatise, academic masterpiece.
क्योंकि इशुपनिषद जो है वास्तविक रूप में एक ऐसा ग्रंथ है, एक मास्टरपीस है, जो कि इस चीज का बहुत अच्छी तरीके से उल्लेख करता है।
Establishes that Brahman is subordinate to the form of the Lord. This is why Prabhupada translated 1969 to convert all his impersonalist disciples to personal conception. You see?
तो श्रील प्रभुपाद जी ने इसलिए किया क्योंकि इशुपनिषद में साफ साफ इसकी व्याख्यान है कि जो ब्राह्मण है वो भगवान के रूप उपस्थित है। इस तरीके से वो अपने शिष्यों को मायावाद सिद्धांत से बचाना चाहते थे।
इशुपनिषद personified praise, my dear Lord. So इशुपनिषद personified is praying to the supreme person.
तो इशुपनिषद में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रार्थना आती है जिसको वो कहते हैं कि हे मेरे प्रिय भगवान। इसका मतलब वो एक व्यक्ति से प्रार्थना कर
रहे हैं।
तो इससे हमें पता चलता है इशुपनिषद में ऐसा लिखा है कि वास्तविक रूप में वो एक परम पुरुष को जो है उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मन से नहीं।
Says in a prayer, a heartfelt prayer, because all the shastras are personified. There, each shastra has a deity.
तो इसमें हम देखते हैं कि इशुपनिषद जो है एक एक परम व्यक्ति से जो है प्रार्थना जो है की जा रही है, क्योंकि देखा जाए कि
देवी ऑफ इशुपनिषद, नॉट मेंशन बाय नेम बट वी विल से श्री इशुपनिषद इज द देवी ऑफ इशुपनिषद।
तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हर ग्रंथ वास्तविक रूप में उनके एक पूज्य विग्रह भी होते हैं। तो इशुपनिषद उन पूज्य विग्रहों से प्रार्थना कर रहे हैं।
श्री इशुपनिषद इज सेइंग, Please remove your divine effulgence.
तो शुभनिषद ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान अपनी कृपा करके तेज कांति को मेरे आंखों से हटाइए ताकि मैं आपका जो है आनंद पूर्वक रूप है उसको मैं देख
पाऊं।
मैं जानता हूं कि आप परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान हैं और इस कांति के कारण मैं आपके रूप को नहीं देख पा रहा, इसलिए कृपा करके इस कांति को मेरे आंखों से हटाइए। तो इशुपनिषद जो है वो भी भगवान विष्णु के भक्त हैं। तो हम सबको इशुपनिषद जरूर पढ़नी चाहिए और वहां पर हमें वो प्रमाण मिलेगा जो कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो मायावाद सिद्धांत को जो है वो ध्वस्त करता है। तो अगर आप किसी के प्रश्न है कि टिप्पणी है कृपा करके आप पूछ सकते हैं।
जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जय गिरिराज गोवर्धन
जय
श्री श्री कृष्ण महाराज
जय।